एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। नमस्कार श्रोताओं, आज हम एक ऐसे सवाल की तह तक जा रहे हैं जिसने शायद हर किसी को कभी न कभी सोचने पर मजबूर किया है। क्या इस विशाल ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? ये सिर्फ रात को तारे देखते हुए सोचने वाली बात नहीं रह गई है अब, बल्कि एक गंभीर वैज्ञानिक खोज का विषय बन गया है।
बिल्कुल, और इसी खोज के विज्ञान को कहते हैं एस्ट्रोबायोलॉजी, यानी ब्रह्मांड में जीवन की तलाश। आज हम इसी फैसिनेटिंग फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे,
और इसके लिए हम डेविड सी कैटलिंग के काम को आधार बना रहे हैं। उनकी दो किताबें हैं, एस्ट्रोबायोलॉजी लाइफ एज अ कॉस्मिक प्रोसेस और एक है एस्ट्रोबायोलॉजी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। हम इन्हीं के मुख्य विचारों पर बात करेंगे।
हाँ, और कैटलिंग का काम हमें दिखाता है कि ये खोज अब कोई साइंस फिक्शन कहानी जैसी नहीं है।
हाँ, अब ये असलियत के ज्यादा करीब है।
बिल्कुल, ये असल विज्ञान है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जियोलॉजी सब कुछ शामिल है।
ये सिर्फ एलियन ढूंढना नहीं है जैसा फिल्मों में दिखाते हैं, बल्कि ये समझना है कि जीवन आखिर है क्या, चीज क्या है ये, और ये कहीं और कैसे पनप सकता है।
और ये आज इसलिए भी इतना जरूरी हो गया है क्योंकि हमारे पास नई तकनीकें आ गई हैं, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप।
हाँ, वो तो कमाल ही कर रहा है।
हाँ, उसने हमें पहली बार वो क्षमता दी है कि हम दूसरे ग्रहों के वायुमंडल में झांक सके और शायद जीवन के कुछ संकेत खोज सके।
तो चलिए फिर शुरू करते हैं ये सफर और देखते हैं कि कैटलिंग हमें इस ब्रह्मांडीय खोज के बारे में क्या सिखाते हैं।
बिल्कुल,
तो सबसे पहले ये डेविड सी कैटलिंग है कौन? मतलब इतने सारे अलग अलग विज्ञानों को जोड़ने वाले इस मुश्किल विषय पर लिखने के लिए उनमें ऐसी क्या खास बात है?
देखिए, कैटलिंग वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान के प्रोफेसर हैं।
अच्छा।
और खास बात यह है कि वो सिर्फ एस्ट्रोनॉमर या सिर्फ बायोलॉजिस्ट नहीं है।
अच्छा।
हाँ, वो एक ग्रह वैज्ञानिक है, प्लैनेटरी साइंटिस्ट। उनका जो रिसर्च है वो इस बात पर फोकस करता है कि ग्रह कैसे बनते हैं, उनका वायुमंडल कैसे बदलता है, और सबसे जरूरी, कैसे किसी ग्रह का भूवैज्ञानिक विकास, उसकी जमीन, पहाड़ वगैरह और उस पर पनपने वाला जीवन एक दूसरे पर असर डालते हैं।
अच्छा, तो ये इंटरकनेक्शन वाली बात है। वो सिर्फ तारों या सिर्फ जीवों को अलग अलग नहीं देख रहे, बल्कि पूरे सिस्टम को देख रहे हैं, ग्रह और जीवन का आपसी रिश्ता।
एग्जैक्टली, यही एस्ट्रो और बायोलॉजी को जोड़ने वाली बात है, ये समझना कि जीवन ग्रह को कैसे बदलता है और ग्रह जीवन को कैसे। ये बहुत जरूरी है, खासकर अगर हम जीवन के सिग्नल बायोसिग्नेचर्स ढूंढ रहे हो।
सही।
उनका यही नजरिया, जिसे हम इंटरडिसिप्लिनरी कहते हैं ना, कई विषयों को मिलाकर सोचने का तरीका।
हाँ
हाँ है। और वो नासा के एक्सोप्लैनेट प्रोग्राम से भी जुड़े रहे हैं।
अच्छा, एक्सोप्लैनेट यानी हमारे सौरमंडल के बाहर वाले ग्रह?
हाँ बिल्कुल, तो उनकी बातें सिर्फ किताबी नहीं है, वो असल रिसर्च पर आधारित है।
तो ये तो पक्का हो गया कि वो इस विषय के एक्सपर्ट हैं। अब उनकी किताबों का निचोड़ क्या है, सेंट्रल आइडिया क्या है उनका?
कैटलिंग का सबसे बड़ा आइडिया ये है कि जीवन कोई एक्सीडेंट नहीं है जो बस पृथ्वी पर हो गया। बल्कि वो कहते हैं कि जीवन एक कॉस्मिक प्रक्रिया है, ये ब्रह्मांड के बनने, तारों के विकास, ग्रहों के निर्माण और उनके बदलने के साथ गहराई से जुड़ा हुआ है। वो जीवन को एक ग्रहों की घटना, एक प्लैनेटरी फिनोमेना के तौर पर देखते हैं।
यानी जीवन कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं, बल्कि शायद ब्रह्मांड के जो नियम हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री है, उसी का एक नेचुरल नतीजा हो सकता है।
हाँ, कुछ ऐसा ही उनकी किताबें एस्ट्रोबायोलॉजी को एक बड़े फ्रेमवर्क में रखती हैं, जो छोटे से छोटे अणु से लेकर विशाल ग्रहों तक सब कुछ जोड़ता है। और मूल सवाल वही है, जीवन बेजान चीजों से कैसे शुरू हुआ, ए बायोजेनेसिस जिसे कहते हैं।
हाँ, ये तो सबसे बड़ा सवाल है।
और ब्रह्मांड में कहाँ कहाँ वो हालात हो सकते हैं जहाँ ऐसा दुबाला हो सके।
तो वो हमें एक तरह की इंटेलेक्चुअल जर्नी पर ले जाते हैं।
बिल्कुल, शुरुआत होती है उन तत्वों से जो जीवन के लिए जरूरी हैं, कार्बन, ऑक्सीजन वगैरह, और ये तारों में कैसे बने, फिर ग्रह कैसे बने, फिर वो बड़ी पहेली के जीवन की पहली चिंगारी कैसे जली।
ए बायोजेनेसिस वाली बात।
हाँ, फिर पृथ्वी पर जीवन और पर्यावरण ने एक दूसरे को कैसे बदला, ये को इवोल्यूशन वाला हिस्सा। और आखिर में आज हम दूसरी दुनियाओं पर जीवन कैसे खोज रहे हैं, कौन सी तकनीकें इस्तेमाल कर रहे हैं।
और आपने बताया था उनकी दो किताबें हैं,
एक थोड़ी ज्यादा टेक्निकल है, हाँ लाइफ इज अ कॉस्मिक प्रोसेस थोड़ी डिटेल्ड है शायद स्टूडेंट्स या रिसर्चर्स के लिए, और दूसरी अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन वो आम पाठक के लिए है जो इस फील्ड को बस समझना चाहते हैं। पर दोनों का मकसद एक ही है, जीवन को सिर्फ बायोलॉजी के नजरिए से नहीं बल्कि पूरे ग्रह के, पूरे ब्रह्मांड के संदर्भ में समझना।
ठीक है, चलिए अब कुछ मुख्य बातों में थोड़ा और गहरे उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एकदम बेसिक चीज से, जीवन के लिए जो सामान चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्हें कहते हैं, कार्बन, ऑक्सीजन, पानी, ये सब आया कहाँ से?
हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है क्योंकि ये हमेशा से तो नहीं थे।
अच्छा,
कैटलिंग बताते हैं कि शुरुआत में बिग बैंग के ठीक बाद यूनिवर्स में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम जैसे बहुत हल्के तत्व थे। जीवन जैसी कॉम्प्लेक्स चीज बनाने के लिए ये काफी नहीं थे। कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, लोहा, ये सब जो भारी तत्व हैं,
जो हमारे शरीर में भी हैं।
हाँ बिल्कुल, ये सब बाद में तारों के अंदर बने। तारे अपनी कोर में मतलब अपने केंद्र में न्यूक्लियर फ्यूजन करते हैं ना, उसी प्रक्रिया में ये तत्व बनते हैं।
तो हम सच में स्टारडस्ट हैं, तारों की धूल।
हाँ सचमुच हम सब असल में तारों की धूल से बने हैं।
कमाल है, तो जीवन का कच्चा माल तारों में बना, लेकिन ये हम तक या पृथ्वी जैसे ग्रहों तक पहुंचा कैसे?
जब बड़े तारे अपनी जिंदगी के आखिर में पहुंचते हैं तो उनमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है जिसे सुपरनोवा कहते हैं।
हाँ, सुना है।
उस विस्फोट में ये सारे बनाए हुए भारी तत्व दूर दूर तक अंतरिक्ष में बिखर जाते हैं, और यही बिखरा हुआ माल, यही धूल और गैस फिर नए तारे और उनके चारों ओर बनने वाले ग्रहों के निर्माण में काम आती है।
अच्छा, तो मतलब जीवन के लिए जरूरी केमिकल सामान वो ब्रह्मांड में ऐसा नहीं कि कहीं दुर्लभ हो, वो तो फैला हुआ है।
बिल्कुल, ये तत्व यूनिवर्स में बहुत कॉमन है, सर्वव्यापी है, ये कोई अनोखी चीज नहीं है।
ठीक है, तो सामान तो मिल गया, कार्बन भी है, पानी के अणु भी बन सकते हैं, पर जीवन क्या है? मतलब एस्ट्रोबायोलॉजी में हम असल में ढूंढ क्या रहे हैं, क्या इसकी कोई पक्की परिभाषा है?
ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है ना, इसका जवाब देना उतना ही मुश्किल है। कैटलिंग भी बताते हैं कि वैज्ञानिक भी इस पर पूरी तरह एकमत नहीं है, कई परिभाषाएं हैं। लेकिन एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए एक प्रैक्टिकल, काम चलाओ परिभाषा इस्तेमाल होती है। वो ये है कि जीवन एक ऐसी केमिकल व्यवस्था है जो खुद को बनाए रख सकती है, सेल्फ सस्टेनिंग, और डार्विन के विकासवाद के नियमों के हिसाब से विकसित हो सकती है।
ओके, इसे थोड़ा और आसान करें तो
मतलब उसमें तीन चीजें होनी चाहिए। एक मेटाबॉलिज्म, यानी वो अपने आसपास से ऊर्जा ले सके और उसे इस्तेमाल कर सके।
ठीक है, जैसे हम खाना खाते हैं।
हाँ, दूसरा आनुवंशिकता, मतलब वो अपनी जानकारी अगली पीढ़ी को दे सके, अपनी नकल बना सके,
रिप्रोडक्शन।
सही, और तीसरा वो पीढ़ी दर पीढ़ी माहौल के हिसाब से ढल सके, बदल सके, यानी एवोल्यूशन, विकास।
मेटाबॉलिज्म, हेरिडिटी और एवोल्यूशन, ठीक है।
और कैटलिंग पृथ्वी पर जीवन के लिए दो चीजों पर बहुत जोर देते हैं, एक तो तरल पानी, लिक्विड वाटर।
पानी क्यों इतना जरूरी है?
क्योंकि पानी एक कमाल का सॉल्वेंट है, घोलक है, इसमें बहुत सारे केमिकल आसानी से घुल जाते हैं और रिएक्शन कर सकते हैं, ये जीवन की केमिस्ट्री के लिए एक बढ़िया मीडियम है।
ओके,
और दूसरी चीज है कार्बन। कार्बन की खासियत यह है कि वो दूसरे एटम्स के साथ मिलकर बहुत लंबे और कॉम्प्लेक्स अणु बना सकता है, डीएनए, प्रोटीन, ये सब कार्बन पर ही आधारित है।
हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरी कार्बन पर है।
बिल्कुल, इसीलिए ज्यादातर वैज्ञानिक खोज पानी और कार्बन पर आधारित जीवन पर ही फोकस करती है। हालांकि कैटलिंग ये भी मानते हैं कि हो सकता है जीवन कहीं और किसी और केमिस्ट्री पर आधारित हो, जैसे सिलिकन पर, या पानी की जगह अमोनिया या मीथेन में, लेकिन शुरुआत पृथ्वी जैसे जीवन से करना लॉजिकल है।
सही बात है, जो हम जानते हैं पहले उसे ढूंढे।
हाँ,
और यहीं पर आता है वो सबसे बड़ा रहस्य, जीवन की उत्पत्ति, ए बायोजेनेसिस, मतलब बेजान केमिकल से जान कैसे आई, ये कैसे हुआ होगा?
ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है, शायद बिलियन डॉलर। कैटलिंग इस पर जो मुख्य थ्योरीज हैं उनको डिस्कस करते हैं।
जैसे
एक तो डार्विन का वो पुराना आइडिया है, गर्म छोटा तालाब, वार्म लिटिल पॉन्ड, मतलब शायद शुरुआती पृथ्वी पर कोई तालाब जैसी जगह थी जहां बिजली कड़कने से या सूरज की गर्मी से सिंपल केमिकल मिलकर कॉम्प्लेक्स बन गए और धीरे धीरे जीवन शुरू हो गया। फिर एक और मजबूत आइडिया है गहरे समुद्र में जो ज्वालामुखी दरारें होती हैं, हाइड्रोथर्मल विंड्स।
अच्छा, समुद्र के नीचे।
हाँ, जहाँ गर्म पानी और केमिकल्स जमीन से निकलते रहते हैं, वहाँ सूरज की रोशनी नहीं पहुँचती, लेकिन केमिकल रिएक्शन से ऊर्जा मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों को लगता है कि जीवन शायद ऐसी जगहों पर शुरू हुआ हो।
ये भी दिलचस्प है।
और एक बहुत ही जरूरी परिकल्पना है आरएनए वर्ल्ड की।
आरएनए वर्ल्ड
ये क्या है?
आज हमारे शरीर में जेनेटिक जानकारी डीएनए रखता है और केमिकल रिएक्शंस प्रोटीन करवाते हैं, लेकिन आरएनए एक ऐसा अणु है जो दोनों काम थोड़ा थोड़ा कर सकता है। वो जानकारी भी स्टोर कर सकता है और कुछ रिएक्शंस भी करवा सकता है।
अच्छा, ऑल इन वन जैसा?
हाँ, एक तरह से। तो ये थ्योरी कहती है कि शायद डीएनए और प्रोटीन से पहले दुनिया में आरएनए पर आधारित जीवन था, वो शुरुआती सिंपल जीवन रहा होगा।
तो अभी पक्का जवाब किसी के पास नहीं है कि इनमें से कौन सा रास्ता सही था?
नहीं, पक्का जवाब नहीं है। ये अभी रिसर्च का बहुत एक्टिव एरिया है। हम लैब में उन शुरुआती कंडीशंस को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या होता है। लेकिन ये थ्योरीज हमें संभावित रास्ते दिखाती हैं कि बेजान से जानदार तक का ये सफर कैसे तय हुआ होगा।
ठीक है,
तो मान लीजिए जीवन शुरू हो गया, उसके बाद क्या? कैटलिंग की वो सह विकास वाली बात कि जीवन और पृथ्वी एक दूसरे को बदलते रहे।
हाँ, ये कैटलिंग के काम का बहुत अहम हिस्सा है।
अच्छा।
उनका कहना है कि पृथ्वी ऐसी रहने लायक पैदा नहीं हुई थी जैसी आज है।
अच्छा।
हाँ, बल्कि जीवन और जमीन, हवा, पानी के बीच अरबों सालों का जो लेन देन हुआ है, जो इंटरैक्शन हुआ है, उसने पृथ्वी को रहने लायक बनाया है।
कोई उदाहरण है इसका?
सबसे बड़ा, सबसे नाटकीय उदाहरण है ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट। ये करीब 2.5 अरब साल पहले हुआ था।
2.5 अरब साल पहले? तब क्या हुआ था?
तब साइनोबैक्टीरिया नाम के बहुत छोटे जीव थे, माइक्रोब्स। उन्होंने फोटोसिंथेसिस करना सीख लिया, मतलब सूरज की रोशनी इस्तेमाल करके खाना बनाना।
ओके।
और इस प्रोसेस का एक वेस्ट प्रोडक्ट था ऑक्सीजन गैस।
ऑक्सीजन, वो तो हमारे लिए जरूरी है।
हाँ, हमारे लिए, लेकिन उस जमाने में जो ज्यादातर जीव थे उनके लिए ऑक्सीजन जहर थी।
अरे
हाँ, इन साइनोबैक्टीरिया ने इतनी ऑक्सीजन बनाई कि वो धीरे धीरे समुद्रों में और फिर वायुमंडल में भरने लगी। इससे उस वक्त के ज्यादातर जीवन का सफाया हो गया, एक तरह की पहली मास एक्सटिंक्शन।
बाबरे, मतलब एक जीव के वेस्ट ने बाकी सबको मार डाला।
बिल्कुल, सोचिए, जीवन ने ही जीवन के लिए खतरा पैदा कर दिया, लेकिन इसी ऑक्सीजन ने बाद में चल के हम जैसे कॉम्प्लेक्स, मल्टीसेल्युलर, ऑक्सीजन पर जीने वाले जीवों के लिए रास्ता खोला।
कमाल है। तो ये दिखाता है कि जीवन सिर्फ माहौल में ढलता नहीं, बल्कि माहौल को बदल भी सकता है, पूरे ग्रह को।
एग्जैक्टली, और यही चीज हमें दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने में मदद कर सकती है। हमें ऐसे ग्रह ढूंढने चाहिए जिनका वायुमंडल अजीब हो, जिसमें ऐसे केमिकल्स हों जो नॉर्मली एक साथ नहीं पाए जाते या बहुत ज्यादा मात्रा में हो। हो सकता है वहाँ कोई जीव उन्हें लगातार बना रहा हो।
जैसा आपने पहले जिक्र किया था, ऑक्सीजन और मीथेन का एक साथ मिलना।
हाँ बिल्कुल, नॉर्मल केमिस्ट्री के हिसाब से ऑक्सीजन और मीथेन को एक दूसरे को खत्म कर देना चाहिए। अगर किसी ग्रह के वायुमंडल में ये दोनों गैसें भारी मात्रा में एक साथ मिले, तो ये एक बहुत मजबूत संकेत हो सकता है कि वहाँ कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस चल रहा है।
इन्हें ही बायोसिग्नेचर कहते हैं।
हाँ, ये बायोसिग्नेचर का एक उदाहरण है, और जेम्स वेब टेलीस्कोप जैसे उपकरण अब ऐसे ही बायोसिग्नेचर्स एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल में खोजने की कोशिश कर रहे हैं।
तो ये खोज कहाँ कहाँ हो रही है? हमारे सौर मंडल में भी कुछ उम्मीदें हैं। वो हैबिटेबल जोन या गोल्डीलॉक्स जोन की बात अक्सर सुनते हैं।
हैबिटेबल जोन वो इलाका है किसी तारे के आसपास जहाँ तापमान ऐसा हो कि ग्रह की सतह पर पानी तरल अवस्था में रह सके, न ज्यादा गर्म की उबल जाए, न ज्यादा ठंडा की जम जाए, मतलब जस्ट राइट। इसीलिए गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं। लेकिन कैटलिंग इस पर जोर देते हैं कि ये बस एक शुरुआती गाइडलाइन है, एक सिंपल कॉन्सेप्ट है। असल में कोई ग्रह रहने लायक है या नहीं, ये सिर्फ दूरी पर निर्भर नहीं करता। उसका वायुमंडल कैसा है, उसकी जमीन कैसी है, क्या वहाँ ज्वालामुखी फटते हैं, क्या उसका मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसी कई और बातें तय करती हैं।
जैसे हमारे सौरमंडल में मंगल, वो हैबिटेबल जोन में आता है ना?
हाँ, वो जोन के बाहरी किनारे पर है।
हाँ।
और हमें पक्के सबूत मिले हैं कि अरबों साल पहले मंगल पर नदियां बहती थीं, झीलें थीं, शायद समुद्र भी थे।
तो क्या वहाँ जीवन था या अब भी है?
यही तो बड़ा सवाल है। शायद सतह के नीचे जमीन में दबा हुआ पानी हो और उसमें माइक्रोब्स जैसे जीव हो। नासा के रोवर यही खोज रहे हैं।
और वो चांद, बृहस्पति का यूरोपा और शनि का एनसेलेडस, वो तो जोन से बहुत दूर है, बहुत ठंडे।
हाँ, वो हैबिटेबल जोन में नहीं है। उनकी सतहें बर्फ से ढकी हैं, लेकिन उस बर्फ की मोटी चादर के नीचे विशाल गहरे समुद्र हो सकते हैं, पूरी पृथ्वी से ज्यादा पानी।
बर्फ के नीचे समुद्र, वो जमता क्यों नहीं?
उन्हें गर्मी मिलती है अपने बड़े ग्रहों बृहस्पति और शनि की ग्रेविटी से। ग्रह उन्हें खींचते हैं, जिससे अंदर घर्षण पैदा होता है और वो गर्मी पानी को तरल रखती है। इसे टाइडल हीटिंग कहते हैं।
अच्छा,
और एनसेलाडस से तो कमाल ही हो गया। कैसिनी स्पेसक्राफ्ट ने देखा कि उसकी बर्फीली सतह से पानी के बड़े बड़े फव्वारे निकल रहे हैं।
सच में?
हाँ।
और उन फव्वारों के पानी का विश्लेषण किया तो उसमें नमक मिला, सिलिका मिला और सबसे जरूरी कार्बन वाले अणु, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिले।
अरे वाह, तो वहाँ जीवन के लिए जरूरी चीजें पानी, केमिकल, ऊर्जा तीनों हो सकती हैं।
बिल्कुल, इसीलिए यूरोपा और एनसेलाडस अब एस्ट्रोबायोलॉजी के लिए बहुत हॉट टारगेट बन गए। भविष्य के मिशन वहाँ भेजे जाएंगे।
और सौर मंडल के बाहर हजारों एक्सोप्लैनेट मिल चुके हैं, वहाँ जीवन कैसे खोजेंगे?
हाँ, केपलर टेलीस्कोप और अब टेस्ट जैसे मिशनों ने हजारों ग्रह खोजे हैं, ज्यादातर ट्रांजिट मेथड से।
ट्रांजिट मेथड मतलब?
मतलब जब कोई ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की रोशनी में एक बहुत हल्की सी कमी आती है, हम उसी कमी को डिटेक्ट करते हैं, इससे ग्रह का साइज और उसकी ऑर्बिट पता चलती है।
ओके, अगला और मुश्किल कदम है इन ग्रहों के वायुमंडल का विश्लेषण करना। जब ग्रह तारे के सामने से गुजरता है तो तारे की कुछ रोशनी ग्रह के वायुमंडल से होकर हम तक पहुंचती है। उस रोशनी का स्पेक्ट्रम देखकर हम पता लगा सकते हैं कि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें हैं।
और वहीं पे वो बायोसिग्नेचर्स ढूंढेंगे, जैसे ऑक्सीजन और मीथेन।
हाँ बिल्कुल, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST यही काम करने में सक्षम है। वो कुछ चुनिंदा एक्सोप्लैनेट्स के वायुमंडल को स्टडी कर रहा है। ये बहुत मुश्किल काम है, सिग्नल बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन शुरुआत हो चुकी है।
और हमें उन एक्सट्रीमोफाइल्स को नहीं भूलना चाहिए, वो जीव जो पृथ्वी पर ही ऐसी खतरनाक जगहों पर रहते हैं जहां हम सोच भी नहीं सकते थे कि जीवन हो सकता है।
सही कहा, ये एक्सट्रीमोफाइल्स तो कमाल के हैं। उबलते हुए एसिड वाले गर्म चश्मों में रहने वाले बैक्टीरिया, गहरे समुद्र की खाइयों में जहां दबाव बहुत ज्यादा है और अंधेरा है, अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे झीलों में या बहुत ज्यादा नमक वाली जगहों पर।
हाँ, ये दिखाते हैं कि जीवन कितना कितना जिद्दी है, कितना लचीला है।
बिल्कुल, और हर बार जब हमें कोई नया एक्सट्रीमोफाइल मिलता है तो ये उन संभावित जगहों की लिस्ट को और बढ़ा देता है जहां हम दूसरे ग्रहों पर जीवन खोज सकते हैं। ये हमें बताता है कि जीवन शायद हमारी कल्पना से कहीं ज्यादा अलग अलग माहौल में पनप सकता है।
शायद यूरोपा के अंधेरे समुद्र में, या मंगल की सूखी जमीन के नीचे, या शायद किसी गैस जायंट के बादलों में भी।
हाँ क्यों नहीं, एक्सट्रीमोफाइल्स हमें सिखाते हैं कि हमें अपना दायरा खुला रखना चाहिए।
ठीक है, तो इन सब बातों से, इस पूरी चर्चा से कुछ बड़े सबक या संदेश क्या निकलते हैं? कैटलिंग के काम का सार क्या है? मुझे लगता है पहला तो यही है कि जीवन सिर्फ जीव नहीं बल्कि ग्रह का हिस्सा है।
हाँ, ये मेरे ख्याल से सबसे जरूरी बात है। जीवन अपने पर्यावरण से अलग नहीं है, वो ग्रह को बदलता है, जैसे हमने ऑक्सीजन इवेंट में देखा, और ग्रह उसे बदलता है। तो जीवन खोजने का मतलब सिर्फ पानी या कार्बन खोजना नहीं है, बल्कि ऐसे ग्रहों को खोजना है जिन्हें जीवन ने फंडामेंटली बदल दिया हो, जिनका केमिकल बैलेंस अजीब हो गया हो।
सही। दूसरा पॉइंट ये लगता है कि जीवन का सामान, इंग्रेडिएंट्स तो हर जगह है, पर उसे जोड़कर जीवन बनाना, असेंबली, शायद बहुत मुश्किल है। ये एक तरह का विरोधाभास है।
हाँ बिल्कुल, कार्बन, पानी, नाइट्रोजन जैसे तत्व ये तो तारों में बनते हैं और पूरे ब्रह्मांड में फैले हैं, ये कॉमन है। पर इन बेजान चीजों से पहली जीवित कोशिका कैसे बनी? वो एबायोजेनेसिस वाला स्टेप, क्या वो बहुत मुश्किल था? क्या वो बहुत ही रेयर घटना थी? या वो भी कॉमन है, हम अभी नहीं जानते।
और यही सवाल हमें खास बनाता है, या शायद नहीं।
एग्जैक्टली।
तीसरा ये कि पृथ्वी ही हमारा एकमात्र उदाहरण है। अर्थ हैज आवर ओनली टेम्पलेट। हम जो भी खोजते हैं यहीं से शुरू करते हैं। ये हमारी लिमिटेशन भी है।
हाँ, ये हमारी मजबूरी भी है और हमारी ताकत भी। हम पानी, कार्बन, ऑक्सीजन जैसे संकेत ढूंढते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर जीवन इनके बिना नहीं चलता। ये एक जरूरी शुरुआती बिंदु है, लेकिन हमें दिमाग खुला रखना होगा कि शायद कहीं जीवन बिल्कुल अलग हो जिसे हम पहचान ही ना पाए।
हाँ, कैटलिंग की वो बात याद है? सवाल ये नहीं कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं, बल्कि ये कि जब हम उसे पाएंगे तो क्या हम उसे पहचानने जितने होशियार होंगे? ये सोचने वाली बात है।
बिल्कुल।
चौथा पॉइंट, विकास में संयोग का बड़ा हाथ है। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं या जैसी होनी चाहिए थी।
हाँ, ये बहुत जरूरी है। पृथ्वी पर जीवन का इतिहास देखें तो वो सीधा रास्ता नहीं रहा है, कई बड़े हादसे हुए हैं, जैसे एस्टेरॉयड टकराना जिससे डायनासोर खत्म हो गए। अगर वो एस्टेरॉयड न टकराया होता तो शायद आज हम यहाँ बात नहीं कर रहे होते, शायद डायनासोर ही राज कर रहे होते। तो जटिल जीवन का विकास और खासकर इंटेलिजेंट जीवन का विकास, ये कोई गारंटीड चीज नहीं थी, ये बहुत सारे संयोगों पर निर्भर था।
और ये फर्मी पैराडॉक्स से जुड़ता है कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और जीवन शायद कॉमन है, तो इंटेलिजेंट एलियन अब तक मिले क्यों नहीं? कहाँ है सब?
हाँ, शायद इंटेलिजेंस बनना ही बहुत रेयर है, या शायद सभ्यताएं बनने के बाद ज्यादा देर टिकती नहीं, खुद को खत्म कर लेती हैं।
ये डरावना है थोड़ा।
हाँ, कैटलिंग कहते हैं कि ब्रह्मांड से ये जो चुप्पी है, ये अपने आप में गहरा ऑब्जर्वेशन है। ये हमें इंटेलिजेंस की दुर्लभता या सभ्यताओं के भविष्य के बारे में कुछ जरूरी बता सकता है।
और आखिर में शायद ये कि ये खोज ही अपने आप में एक बदलाव ला रही है। द सर्च इटसेल्फ इज ट्रांसफॉर्मेटिव, नतीजे का इंतजार किए बिना भी।
निश्चित रूप से, भले ही हमें कल जीवन ना मिले, लेकिन इसकी तलाश, ये जो सवाल हम पूछ रहे हैं, ये हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह के बारे में, जीवन के मतलब के बारे में, और सबसे जरूरी, अपने इस अकेले ज्ञात जीवित ग्रह की कीमत के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा है।
हाँ।
और इस कोशिश में विज्ञान और तकनीक की सीमाएं भी तो आगे बढ़ रही हैं। नए टेलीस्कोप्स बन रहे हैं, नए मिशन प्लान हो रहे हैं।
ये सब सुनने में बड़ा दिलचस्प है, दार्शनिक भी हैं, वैज्ञानिक भी, पर क्या एस्ट्रोबायोलॉजी के इन विचारों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी या समाज पर भी कोई असर पड़ता है? मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है?
हाँ, बिल्कुल पड़ता है, शायद सीधे तौर पर नहीं, लेकिन सोचने के तरीके पर जरूर पड़ता है। पहला तो है एक ब्रह्मांडीय नजरिया और विनम्रता।
वो कैसे?
जब हम सोचते हैं कि ब्रह्मांड 13.8 अरब साल पुराना है और खरबों आकाशगंगाएं हैं और हमारी पृथ्वी बस एक छोटा सा नीरा बिंदु है, तो हमारी अपनी रोज की चिंताएं, हमारे आपसी झगड़े, वो थोड़े थोड़े छोटे लगने लगते हैं ना।
ये बात तो है, थोड़ा पर्सपेक्टिव मिलता है।
और ये हमें विनम्र बनाता है, हमें अपने अस्तित्व की, इस जीवन की, इस ग्रह की बहुमूल्यता का एहसास कराता है।
दूसरा असर पर्यावरण के प्रति जागरूकता यानी एनवायरमेंटल अवेयरनेस पर हो सकता है।
बिल्कुल। जब हम देखते हैं कि कैसे जीवन और पृथ्वी की व्यवस्थाएं आपस में जुड़ी हुई हैं, कैसे जीवन ने ही ऑक्सीजन बनाकर पूरे ग्रह का माहौल बदल दिया, तो ये हमें अपने ग्रह के प्रबंधन के बारे में एक शक्तिशाली सबक देता है।
ये एक चेतावनी भी है कि हम इंसान भी अपने कामों से ग्रह की जलवायु को तेजी से बदल रहे हैं।
हाँ। तीसरा, ये वैज्ञानिक और तार्किक सोच को बढ़ाता है।
कैसे?
एस्ट्रोबायोलॉजी हमें सिखाती है कि कैसे बहुत कम डेटा और सबूतों के आधार पर परिकल्पनाएं बनाएं, कैसे उन परिकल्पनाओं को टेस्ट करने के लिए प्रयोग डिजाइन करें, और कैसे वैज्ञानिक संभावनाओं और झूठे दावों जैसे यूएफओ की मनगढ़ंत कहानियां के बीच फर्क करें।
हाँ, वो जरूरी है। असाधारण दावों के लिए असाधारण सबूत चाहिए, ये सिद्धांत यहाँ भी लागू होता है।
बिल्कुल। और ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए विज्ञान में प्रेरणा, इंस्पिरेशन फॉर स्टेम का एक जबरदस्त स्रोत है।
हाँ, बच्चों को तो ये सवाल बहुत खींचता है, क्या एलियन होते हैं?
हाँ, और ये सवाल उन्हें खगोल विज्ञान, रोबोटिक्स, भूविज्ञान, जीव विज्ञान, इन सब में रुचि लेने के लिए प्रेरित कर सकता है।
तो आज की इस पूरी बातचीत से आपके लिए सबसे अहम या सबसे चौंकाने वाली बात क्या रही? क्या चीज आपके साथ रह जाएगी?
मेरे लिए शायद वो विरोधाभासी सबसे दिलचस्प है कि जीवन के लिए जरूरी सामान, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स, तो यूनिवर्स में हर जगह बिखरे हैं, लेकिन जीवन की वास्तविक शुरुआत, वो एबायोजेनेसिस, वो अब भी इतना बड़ा रहस्य क्यों है? ये चीज हमें अपनी जगह के बारे में बहुत गहरे सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या हम वाकई इतने खास हैं या बस ब्रह्मांड की एक आम सी घटना? और ये जानना भी रोमांचक है कि हम शायद इतिहास में एक ऐसे मोड़ पर जी रहे हैं जहां हमारे पास वो उपकरण आ रहे हैं जिनसे हम इन सवालों के जवाब खोजना शुरू कर सकते हैं। ये वाकई एक्साइटिंग है।
हाँ, मेरे लिए भी ये सोचना ये कमाल है कि जीवन ने कैसे इस ग्रह को एक्टिवली तराशा है, उसे बदला है, खासतौर पर वो ऑक्सीजन वाली क्रांति। हम बस इस ग्रह पर मेहमान नहीं है, हम इसी का हिस्सा हैं और इसने हमें बनाया है, हमने इसे बनाया है। ये को एवोल्यूशन वाला आइडिया बहुत पावरफुल है।
बिल्कुल। और ये सोचना कि हम शायद उन पहली सभ्यताओं में से एक हो सकते हैं जो ब्रह्मांड की कहानी को समझने की कोशिश कर रही है, ये विनम्र भी बनाता है और विस्मय से भी भर देता है।
सही कहा। कैटलिंग का काम हमें इस बड़ी खोज के लिए एक मजबूत वैज्ञानिक ढांचा देता है। चलिए श्रोताओं के लिए एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। सोचिए, अगर कल हमें किसी दूसरे ग्रह पर जीवन का पक्का सबूत मिल जाए, चाहे वो सिर्फ सिंपल बैक्टीरिया ही क्यों ना हो, तो आपको क्या लगता है ये खोज हम इंसानों को, हमारी सोच को, हमारे समाज को कैसे बदल देगी?
सोचने वाली बात है।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।